नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न, वोटों की गिनती 14 सितंबर को होगी। भारत की अध्यक्षता और मेजबानी में 18वां ब्रिक्स सम्मेलन कल से नई दिल्ली में, दुनिया के कई प्रमुख नेता पहुंचे। देश में आज से फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा की शुरुआत और राज्य के कुछ हिस्सों में मॉनसून के फिर से सक्रिय होने से उमस भरी गर्मी से राहत, कल 29 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान अब से कुछ देर पहले संपन्न हुआ। 147 निकायों में शाम 5 बजे तक लगभग 68% वोट डाले गए। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान का सिलसिला शाम 6 बजे तक पोलिंग बूथ परिसर में प्रवेश करने वालों के लिए जारी रहा। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान सुचारू और शांतिपूर्ण रहा। इस चरण में 6 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 121 नगर पालिकाओं के लिए मतदान हुआ। शहरों की सरकार चुनने के लिए लोगों में उत्साह देखा गया। दोपहर 3 बजे तक बाड़मेर के धोरीमन्ना में 85% से अधिक वोट डाले जा चुके थे। वहीं उदयपुर के मावली में 80% वोट डाले गए। बाड़मेर के चौहटन में 78% मतदान दर्ज हुआ। प्रमुख नगर निगमों में दोपहर 3 बजे सबसे कम अजमेर में करीब 48% वोट डाले गए। मातृशक्ति और युवा शक्ति, नव मतदाता तथा बुजुर्गों सहित हर आयु वर्ग में मतदान को लेकर जोश देखा गया। लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी के बाद मतदाताओं ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
पिंगवाड़ा नगर पालिका चुनाव में मैंने पहली बार हिस्सा लिया है और मैं बहुत खुश हूँ और इतनी एक्साइटेड थी कि सुबह उठ के मैं सीधा यही आगे रेडी होकर के नाश्ता भी नहीं किया और मेरे को बहुत खुशी है कि लोकतंत्र में मेरा कहीं पे योगदान रहेगा।
मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है, वोट देकर मेरा अधिकार है और मैं आप सबसे यही अपील करती हूँ कि आप अपना वोट दीजिए, आप इससे वंचित न रहिए।
मेरा नाम निशा है, मैंने आज मतदान किया है। सभी को इस मतदान में भाग लेना चाहिए, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। प्रत्याशी से हम ये उम्मीद रखना चाहते हैं कि वो महिलाओं के लिए अच्छी सुविधाएं बनाए और सभी गांव में अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं स्थापित करें, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की जाए।
निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर की जगतपुरा स्थित मतदान केंद्र में वोट डाला। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने वन स्टेट वन इलेक्शन को जनता के हित में बताया।
राजस्थान को विकसित बनाने का, निकाय को विकसित बनाने का हमारा दायित्व होता है। हमारा वो संकल्प वन स्टेट वन इलेक्शन वो हमने पूरा किया है। आज राजस्थान निश्चित रूप से जनता सुखद महसूस कर रही है कि हमारे 2 महीने के अंदर हमारे चुनाव हो जाएंगे और फिर आराम से राजस्थान की जनता के विकास के कार्य होंगे।
दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के साथ ही 18,266 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है। 162 निकायों में हुए पहले चरण में मतदान प्रतिशत 76.41 रहा। कुल 309 निकायों में हुए इन चुनाव के लिए 38,929 उम्मीदवार मैदान में हैं। 76 वार्डों में प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। वोटों की गिनती 14 सितंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होने की उम्मीद जताई। भारत की अध्यक्षता और मेजबानी में आयोजित होने वाले 2 दिन के शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक मंच पर होंगी। भारत मंडपम में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखा गया है। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज दोपहर में नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ भी बातचीत करेंगे। ब्रिक्स देशों ने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं सहित एक तरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। सदस्य देशों ने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और ये विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों के अनुसार नहीं है। उन्होंने WTO को केंद्र में रखते हुए स्वतंत्र, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के लिए समर्थन दोहराया। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों ने कहा कि भू राजनीतिक तनाव, व्यापार में बिखराव, संरक्षणवाद, नीतिगत अनिश्चितता, राजकोषीय और मुद्रास्फीति संबंधी दबाव, बढ़ते कर्ज और वित्तीय जोखिमों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां बनी हुई हैं। इनका सबसे ज्यादा असर उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, किंतु भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अड़िग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित भारत दशकों से इसके खिलाफ लड़ाई में आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके तहत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप द्वारा नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 10 सेकेंड से कम करना है। उन्होंने बताया कि देश भर में अब तक 13 करोड़ से ज्यादा फास्टैग जारी किए जा चुके हैं।
देश में अब तक 13 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए जा चुके हैं। ये आप सबको आह्वान किया है कि इसका आगे फ्यूचरिस्टिक डिजिटल रिसर्च करके इसका और क्या क्या उपयोग हो सकता है, इसके रिकमेंडेशन सजेशंस हमको दीजिए, हम उसमें पूरी तरह आपको सहयोग करेंगे। मेरा मानना है कि भविष्य का हाईवे केवल एक फिजिकल रोड नहीं होगा, वो डिजिटल हाईवे है, और इसलिए आपको ये अब इसमें से फाइंड आउट करना है कि हम क्या क्या करने से लोगों के जीवन को सुसह्य बना सकते हैं और सिस्टम को ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और करप्शन फ्री बना सकते हैं।
सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर का प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश लक्खी मेला कल से शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस मेले के लिए श्रद्धालुओं की भारी आवक को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया कि मेले में साफ सफाई पर विशेष जोर रहेगा। मेले को पूरी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक और डिस्पोजल सामग्री से मुक्त रखा जाएगा। उन्होंने सभी मेलार्थियों से स्वच्छता को लेकर सहयोग करने की अपील की है।
श्रद्धालु इस सुरक्षा को लेकर जहाँ भी हमें लाइटिंग की, बैरिकेडिंग की, टॉयलेट की, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज की, वो सारी सुविधाएं जो है जिला प्रशासन द्वारा की गई है। इस बार हमने एक आग्रह किया है प्लास्टिक मुक्त इस मेले को रखने में अपना सहयोग दे, प्लास्टिक का यूज नहीं करे। इसमें जितने भी भंडारे लगेंगे उसमें जो भंडारे स्वच्छता के सारे नॉर्म्स पालन करेंगे तो मिलजुल कर इस जो है मेले को स्वस्थ रखे, साफ सुथरा रखे, क्योंकि इस दौरान भारी बारिश की भी चेतावनी है। तो हमने श्रद्धालुओं से ये भी आग्रह किया कि आप कोई नदी नाले जिसमें जल का बहाव हो रहा हो उसको क्रॉस नहीं करें, क्योंकि पहाड़ों से और जंगल से पानी बहुत तेजी से आता है। ऐसी स्थिति में कोई दुर्घटना नहीं हो, तो हमने सभी नाले और झरने उनके आसपास पर्याप्त जागरूकता और हमारे वॉलंटियर्स भी लगाए हैं।
राज्य में मानसूनी गतिविधियों का दौर एक बार फिर आज से सक्रिय हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के सिस्टम ने मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। इसके असर से पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। बारिश का ये दौर 15 सितम्बर तक जारी रहने के आसार हैं। कल 29 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच आज दोपहर बाद भरतपुर में घनघोर घटाएं छा गईं और डेढ़ घंटे तक झमाझम बरसात हुई। बारा में भी दोपहर बाद कुछ देर जोरदार पानी बरसा। राजधानी जयपुर में भी अब से कुछ देर पहले बरसात का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि मौसम के इस बदलाव से पहले अधिकतर स्थानों पर उमस भरी गर्मी बनी हुई है। पिछले 3-4 दिनों से बारिश का दौर थमने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 10 से ज्यादा स्थानों पर दिन का तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच मापा जा रहा है। पिलानी में पारा 40 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। वहीं श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू सहित अन्य स्थानों पर दिन का तापमान 37 डिग्री के पास पहुंचने से उमस और गर्मी ने जोर पकड़ लिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 सप्ताह प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने का पूर्वानुमान बताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। वोटों की गिनती 14 सितंबर को होगी। भारत की अध्यक्षता और मेजबानी में 18वां ब्रिक्स सम्मेलन कल से नई दिल्ली में। दुनिया के कई प्रमुख नेता पहुंचे। देश में आज से फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा की शुरूआत। और राज्य के कुछ हिस्सों में मानसून के फिर से सक्रिय होने से उमस भरी गर्मी से राहत। कल 29 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।